ప్రేమానందే ఆర్గో విశ్వాసంగా పోయి ఆర్గో విశ్వాసంగా పోయి ఆర్గో విశ్వాసంగా పోయి ఆర్గో
दिवस है या आविर्भाव दिन है। भगवान श्री कृष्ण इस भौतिक जगत में अवतरित होते हैं तो उनके साथ साथ वो अपने पार्षदों को भी लेकर आते हैं। और भगवान जैसे हम प्रभुपाद कहते थे कि राजा आता है तो कभी वो अकेला नहीं आता है। राजा आ रहा है उसका मतलब उसके साथ उनके पार्षद है, बाकी संगी है, रानी है। तो उसी प्रकार भगवान इस जगत में प्रकट होते हैं, स्पेशली इस भव्य वृंदावन में कई प्रकार के दिव्य लीलाएं प्रकट करने के लिए हैं। और इन दिव्य लीलाओं को प्रकट करने का एकमात्र उद्देश्य है कि इस संसार में जो जीव हैं भौतिक भोग के प्रति उनका आकर्षण तीव्र मात्रा में है, तो ऐसा जो इस भौतिक जगत को भोगने के प्रति जो आकर्षण है उसको कम करने के लिए या भौतिक जीवों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए भगवान अपने अंतरंगा शक्ति के साथ आविर्भूत होते हैं। तो आज का जो दिन है राधा अष्टमी, भगवान भी अष्टमी के दिन ही अवतरित होते हैं। हाँ, कृष्ण जन्माष्टमी और राधा अष्टमी और सीता, राम जी का भी वैसे ही है, हाँ, सीता नवमी और राम नवमी। तो देखा जाए तो एक ही प्रकार की तिथि में भगवान या उनकी अंतरंग शक्ति है वो आविर्भूत होती है। तो श्रीमती राधा रानी का जो गुण है, उनकी जो महिमा है, सारे शास्त्र बहुत ही विस्तार रूप से वर्णन करते हैं। जैसे कि भगवान के गुण, उनके नाम, उनके रूप, उनकी लीलाएं अनंत हैं, तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी के भी जो गुण हैं, गौरवशाली गुण, वो भी अनंत और अपार हैं, क्योंकि वो भगवान की अंतरंगा शक्ति है। चैतन्य चरितामृत में श्री कृष्ण दास कविराज कहते हैं, गोविंदा नंदिनी राधा गोविंद मोहिनी, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। तो कृष्णदास कविराज कहते हैं, गोविंद नंदिनी, जो गोविंद है भगवान कृष्ण, गो मीन्स इंद्रिया भी होती हैं या फिर गव्य हैं जिनको आनंद प्रदान करते हैं, ऐसे जो कृष्ण हैं जो सारे जगत को दूसरों को आनंद प्रदान करते हैं या आनंद प्रदाता हैं, तो लेकिन श्रीमती राधा रानी उनको क्या करती है, दिव्य आनंद प्रदान करती हैं। और गोविंद मोहिनी, तो श्रीमती राधा रानी को गोविंद को मोहित करती हैं। कृष्ण अपने नाम रूप गुण लीला इन सब के द्वारा सारे जगत के चर अचर प्राणियों को भी अपनी ओर आकर्षित करते हैं। वृंदावन में आप देखेंगे कि कृष्ण का सौंदर्य इतना अद्भुत है कि वृंदावन के पशु पक्षी कीट प्राणी स्त्रिया पुरुष सब कृष्ण की ओर आकर्षित होते हैं। तो लेकिन ऐसे जो सर्वाकर्षक कृष्ण है, प्रभुपाद कहते थे भगवान का मतलब कि जो सबको आकर्षित करें, इसलिए कृष्ण शब्द का अर्थ है कर्षति इति कृष्ण, कि जीवों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं उन्हें कृष्ण कहा जाता है। तो ऐसे जो कृष्ण सारे संसार को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी वो क्या है, ऐसे कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित करती हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज कहते हैं, गोविंद मोहिनी, मोहित करती हैं। हाँ, जैसे कृष्ण का एक नाम है मदन मोहन, मदन मीन्स कामदेव। तो इस संसार में हर एक जो जीव हैं किसी भी अलग अलग योनि में हैं, तो ये काम से वो ग्रसित हैं या आकर्षित हैं। तो हर एक लिविंग एंटिटीज को ये जो कामदेव हैं वो अपनी ओर आकर्षित करता है। लेकिन जो कामदेव है वो एक दिन सोचता है कि मैं कृष्ण को आकर्षित करता हूँ मेरी ओर, तो वृंदावन चला जाता है और कृष्ण अपनी लीलाओं में मस्त थे, तो एक पेड़ के ऊपर जाकर जो पांच प्रकार के बाण हैं जो कामदेव अलग अलग जीवों पर चलाता है, तो उसने जैसे ही बाण अपना काम बाण कृष्ण की ओर ताना या कृष्ण की ओर छोड़ना चाहा, लेकिन जैसे ही उसने कृष्ण को देखा वैसे वो पेड़ से कामदेव वो क्या गए, गिर गए। तो कृष्ण का नाम क्या पड़ा फिर, मदन मोहन। मदन मीन्स मदन को जो आकर्षित करते हैं वो कृष्ण कृष्ण की ओर वो मदन कामदेव आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण को जाना जाता है मदन मोहन। लेकिन श्रीमती राधा रानी इतनी आकर्षक हैं, इतने दिव्य हैं कि कृष्ण भी क्या होते हैं, श्रीमती राधा रानी के द्वारा आकर्षित हो जाते हैं, इसलिए कृष्ण को कहा जाता है मदन मोहन मोहिनी। इस प्रकार से हम देखेंगे कि भगवान की ये जो आह्लादनी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, जो सारे जीवों को दिव्य आनंद या भक्ति का जो आनंद है वो प्रदान करती हैं। तो आगे कहते हैं, गोविंद सर्वस्व सर्वकांता शिरोमणि। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो गोविंद या कृष्ण की सर्वस्व है, सब कुछ जो श्रीमती राधा रानी है, जैसे कि कृष्ण अपना जो हृदय है वो ओपन करते हैं, जैसे हम भी अपना हृदय किसी के पास जाकर ओपन करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे हृदय में भी क्या है, कई प्रकार के कष्ट हैं, चिंताएं हैं। तो उसी प्रकार कृष्ण भी जो आदि पुराण है उसमें अपना हृदय खोलते हैं, किसके पास, अर्जुन के पास। तो अर्जुन को कहते हैं कृष्ण के, त्रैलोक्य पृथ्वी धन्या यत्र वृंदावन पुरी, कि हे अर्जुन, इन तीनों लोकों में जो पृथ्वी है वह धन्य है। क्यों, क्योंकि इस पृथ्वी में वृंदावन है, वृंदावन पुरी या मथुरा या वृंदावन धाम है, इसलिए ये जो पृथ्वी है वो महान है या धन्य है। तत्रापि गोपिका पार्थ यत्र राधा भेदा मम, के उनमें भी जो श्रेष्ठ है हाँ वो गोपियाँ हैं, और उनमें से भी जो मुझे प्रिय हैं वो कौन है, श्रीमती राधा रानी हैं। इस प्रकार से हम देखते हैं कि जो कृष्ण को जो सर्वोच्च हाँ प्रिय है हाँ वो श्रीमती राधा रानी हैं। इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी अतएव संसारे र परा ठाकुरानी। हाँ तो कृष्ण को ठाकुर कहा जाता है स्वामी, तो उसी प्रकार श्रीमती राधा रानी ठाकुर रानी हैं। तो कहते हैं जगत मोहन कृष्ण ताहर मोहिनी, जगत को कृष्ण अपनी ओर मोहित करते हैं, लेकिन श्रीमती राधा रानी उसी कृष्ण को अपनी ओर हाँ आकर्षित करती हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी हैं कोई सामान्य बालिका नहीं है, या कृष्ण कोई सामान्य पुरुष या युवक नहीं है, तो हमें कभी भी श्रीमती राधा रानी या कृष्ण को सामान्य नहीं समझना चाहिए। हाँ तो ये जो प्रवृत्ति हमारे हृदय में हमेशा है, क्योंकि जैसे हम राधा कृष्ण की बात करते हैं हाँ तो हम भौतिक रूप से उनको देखते हैं, हाँ स्पेशली हम उनकी रास लीलाओं की चर्चा करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा जो हृदय है भौतिक भोग की इच्छाओं से भरा पड़ा है। तो कृष्ण और जो श्रीमती राधा रानी हैं वो दिव्य हैं, और उनके बीच हाँ जो दिव्य लीलाएं वो वृंदावन में प्रकट करते हैं वो भी इस भौतिक जगत के नहीं हैं। तो ये चीज इस जो दिव्यता को समझने के लिए, इसलिए कृष्ण कहते जन्म कर्म च मैं दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वार्जुन। हे अर्जुन, मेरा जो जन्म है और मेरे जो कर्म है, मेरी जो दिव्य लीलाएं हैं वो सामान्य नहीं है। हाँ कृष्ण को समझना इतना सरल नहीं है। तो कृष्ण की इस दिव्यता को हम समझ सकते हैं हाँ भगवान के भक्तों के माध्यम से। और यदि हम नियमित रूप से कृष्ण के नाम रूप गुण लीला और उनके दिव्यता को सुनते हैं ऑथोराइज अधिकृत परंपरा से, अधिकृत आचार्यों से, अधिकृत जो भक्त हैं उनसे सुनते हैं, तो कृष्ण के प्रति वो जो सामान्य बुद्धि है वो नहीं आती। इसलिए आप नॉर्मली देखेंगे कि जब वृंदावन जाते हैं तो कृष्ण और राधा रानी को सहज ले लेते हैं, और वैसे ही समझते हैं कि जिस प्रकार के इस संसार के एक जो युवक और युवती हैं उस प्रकार से हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी ग्रेटनेस या उनकी महानता को नहीं जानते, तो उनको सहज लेने लगते हैं। इसलिए कहा जाता है कि हम सहजिया बने जाते हैं, हम हर एक चीज को भगवान की भक्ति या राधा कृष्ण की जो कार्यकलाप है, उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण, उनकी लीलाएं, उनको सहज लेना, उनको सहजिया कहा जाता है। और फिर सहजिया क्या करते हैं? सहजिया भजन गाते हैं, राधे राधे, क्या है वो, शाम मिला दे, ऐसे शाम नहीं मिलेंगे, हाँ प्रॉपर प्रोसेस को नहीं जानेंगे। और भी हैं, राधे राधे जपा करो चले आएंगे बिहारी। तो इस प्रकार से क्या करते हैं, राधा कृष्ण को हम बहुत सहज ले लेते हैं। तो इन सब हाँ भजनों से, इस प्रकार के गीतों को गाने से कभी राधा कृष्ण की कृपा नहीं मिलेगी, क्योंकि पद्म पुराण कहता है हाँ मंत्रास्ते निष्फलामता, क्या है श्लोक, हाँ संप्रदाय विहीना मंत्रास्ते निष्फलामता। इस संप्रदाय के विहीन यदि आप किसी मंत्र या भजन या किसी और चीज को स्वीकार करते हैं जो पूर्ववर्ती आचार्यों ने दिया नहीं है, तो वो क्या है, चांत करने से, उसका उच्चारण करने से उसका कोई फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए ये बहुत आवश्यक है कि जो पूर्ववर्ती आचार्य हैं, जो भगवान के महान भक्त हैं, उन्होंने जो भक्ति की जो विधि दी है और जो नियम दिए हैं, उनके अनुसार यदि हम हमारा भक्तिमय जीवन जीते हैं, तो हम निश्चित रूप से राधा कृष्ण की ओर अग्रसर होते हैं। तो उसके लिए हमें उस घोड़े के समान होना होगा, जिस घोड़े के साइड में क्या कहते हैं उसको, फ्लैप्स लगे होते हैं, हाँ, तो यहाँ वहां नहीं देखता, वो क्या करता है, सीधा देखता है, यहाँ से सीधा, हाँ, वृंदावन की ओर, कृष्ण की ओर, हाँ। इसलिए ये जो पूर्ववर्ती आचार्यों के जो विधि विधान है वो ये काम करते हैं, हाँ, क्योंकि हम, हमें स्वाभाविक है इस भौतिक संसार के जो आकर्षक चीजें हैं उनकी ओर आकर्षण हमारे हृदय में बना रहता है। तो इसलिए आज बहुत ये पवित्र दिन है कि जिस दिन हम श्रीमती राधा रानी का स्मरण कर सकते हैं और ये जान सकते हैं कि श्रीमती राधा रानी का मूड क्या है और उसके साथ साथ उनकी कृपा हमें कैसे प्राप्त करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि आज जैसे आप देखेंगे कि कोई पहले राजा होता था तो उनका जब जन्मदिन होता था तो चाहे जेल में कितने ही कैदी क्यों ना हो या कोई भी उनको मिलने आता है तो उदारता से हर एक चीज वो देने के लिए क्या करता है, तैयार होता है। हाँ, क्वालिफिकेशन हो या ना हो, तो उसी प्रकार यदि सिंसियरली आज के दिन हम श्रीमती राधा रानी के चरण कमलों में वंदना करते हैं, प्रार्थना करते हैं भगवत भक्ति में आगे बढ़ने के लिए, तो जो श्रीमती राधा रानी है वो हमारे ऊपर कृपा प्रदान करती हैं। तो हम तीन चीजें डिस्कस करेंगे उस समय के लिए, बहुत कम समय है। एक है कि किस प्रकार श्रीमती राधा रानी इस भौतिक जगत में या भौम वृंदावन में अवतरित हुई और फिर किस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की सेवा हम कर सकते हैं और फिर किस प्रकार उनकी कृपा प्राप्त कर सकते हैं कि हम हमेशा हमेशा के लिए राधा कृष्ण के दिव्य सेवा में लगे रहें, क्योंकि बिना सेवा के हम नहीं रह सकते, ये स्वभाव है। जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्यदास, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो जीव है उसका स्वभाव यही है दासत्व, वो किसी की ना किसी की सेवा करना चाहता है, लेकिन विफले सेविनो कृपाना दुर्जना चपल सुख लवलागिरे, तो विफल जो सेवा है कृपण लोगों की सेवा में वो लगा है लेकिन उसको दिव्य सेवा की लालसा जागृत करनी चाहिए। और दिव्य सेवा किसकी की जा सकती है, हाँ, श्री श्री राधा कृष्ण की। हाँ, तो राधा कृष्ण अलग सेवा नहीं, राधा जैसे कई संप्रदाय हैं हम जानते हैं कि जहाँ राधा रानी को वो स्वीकार ही नहीं करते, अलाउड ही नहीं है उस संप्रदाय में राधा रानी, वो बस कृष्ण की पूजा करते हैं। हाँ, तो इससे आप कृष्ण की कृपा नहीं प्राप्त कर सकते। हाँ, तो हमारे जो आचार्य हैं उनकी शिक्षा क्या है, युगल युगल सेवा श्रीमती राधा रानी और कृष्ण की दिव्य सेवा। इस संसार में श्रीमती राधा रानी अवतरित होती है ब्रज धाम वृंदावन में, और अब जानते हैं वृंदावन में एक रावल नाम का स्थान है गोकुल के पास, तो जो वृषभानु है वो एक दिन अपने खेत में कार्य कर रहे थे तो उस समय श्रीमती राधा रानी एक छोटे से बालक के रूप में उनको प्राप्त हुई, क्योंकि जो कीर्तिदा देवी है और वृषभानु जो राजा है उनको कोई संतान नहीं थी, तो ये श्रीमती राधा रानी स्वयं ही प्रकट होती है। हाँ, ये कमल के ऊपर श्रीमती राधा रानी प्रकट होती है और जब वो देखते हैं इतनी सुंदर बालिका, हाँ, जो बिल्कुल तप्त कांचन, हाँ, उनका जो कलर है वो सुवर्ण के समान था, तो उस बालिका को लेते हैं वृषभानु राजा और वो अपने घर जाते हैं और जो कीर्तिदा देवी है उनको उस बालिका को प्रदान करते हैं, और फिर उनके पास संतान नहीं थी तो उसका ही पालन पोषण करने लगते और बहुत खुश होते हैं। तो लेकिन एक दिक्कत उनको आ रही थी, उन्होंने देखा कि जो श्रीमती राधा रानी हैं वो अपनी आंखें नहीं खोल रही हैं, उनकी आंखें क्या हैं, बंद हैं। तो उस समय कई सारे संत महात्मा साधु ऋषि मुनि वृंदावन में हम श्रावण करते थे, तो वृषभानु राजा ने सोचा कि नारद जी आते हैं तो मैं उन्हें पूछता हूँ कि क्या कारण है कि श्रीमती राधा रानी अपनी ये जो आंखें हैं वो नहीं खोल रही हैं। तो फिर जब नारद जी आते हैं तो फिर नारद जी कहते हैं, हाँ, उनको स्मरण आता है अचानक कि जब भगवान इस जगत में अवतरित होने वाले थे तो वो श्रीमती राधा रानी को कहते कि मैं जा रहा हूँ अपने धाम के साथ, तो तुम भी मेरे साथ चलो। तो श्रीमती राधा रानी कहते कि मैं कैसे आ सकती हूँ, हाँ, बिना गोवर्धन और यमुना के, हाँ, बिना मैं नहीं आ सकती। तो कृष्ण तैयार होते हैं। और दूसरी बात यह है कि श्रीमती राधा रानी कहती है कि मैं किसी और पुरुष को नहीं देखना चाहती आपके अलावा, हाँ, क्योंकि शुद्ध भक्त या जो सर्वोच्च भक्त है उनका यह लक्षण है, जहाँ जहाँ नेत्र पड़े तहाँ तहाँ कृष्ण स्फुरें, जहाँ जहाँ वो देखते हैं, हाँ, वो वहाँ उन्हें श्री कृष्ण का स्फुरन होता है, स्फुरित होते हैं। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो कहती है कि मैं नहीं देखना चाहती किसी और पुरुष को। तो फिर एक दिन वृषभानु राजा बहुत सारा एक फेस्टिवल मनाते हैं और सारे ब्रजवासी को इनवाइट करते हैं, उसके साथ साथ नंद महाराज और यशोदा मैया को भी बुलाते हैं उनके बालक कृष्ण के साथ। कृष्ण भी बहुत छोटे थे। और फिर आते हैं तो जब वहाँ कीर्तन और कई सारी एक्टिविटीज हो रहे थे वृषभानु राजा के घर में, तो ये सारे बड़े लोग आपस में कीर्तन में कथा में मस्त हैं, हाँ। तो और फिर तो क्या होता है, उस समय राधा रानी उनके एक छोटे से रूम में सो रहे थे, क्या कहते हैं बच्चे को डालते हैं जिसमें पालने में, तो उसमें सो रहे थे अकेले। तो कृष्ण छोटे से ही थे तो ये सारे लोग मस्त हैं, हाँ, कृष्ण कथा करने में, हाँ, कृष्ण का गान करने में सारे लोग लगे हुए हैं। तो उस समय कृष्ण उन सबसे दूर जाते हैं और जाके क्या करते हैं, उस पालने के पास जाते हैं और छोटे से बालक थे तो कृष्ण ऐसे अपने ऐसे खड़े हो जाते हैं और राधा रानी को देखने के लिए, तो देखते कि राधा रानी की आंखें बंद हैं। तो कृष्ण अपने जो कमलवत हाथ हैं मुलायम हाथ क्या करते हैं, राधा रानी के आंखों में लगाते हैं। आंखों में लगाने मात्र से जो श्रीमती राधा रानी है वो अपने आंखें खोलती हैं और किसका दर्शन करती है, श्री कृष्ण का, हाँ, कृष्ण के दिव्य रूप का दर्शन करती है। तो इस प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी है और फिर सारे ब्रजवासियों का, हाँ, ये करती है आनंद वर्धन करती है। तो राधा कृष्ण के ऐसे कई दिव्य लीलाओं का वर्णन व्यासदेव ने अलग अलग पुराणों में और इतिहासों में किया है। उसके साथ साथ श्री चैतन्य महाप्रभु के जो अनुयायी हैं षड गोस्वामी, हाँ, जो छह गोस्वामी हैं या और कई आचार्य थे, उन्होंने भी बहुत ही विस्तार रूप से अपने अलग अलग ग्रंथों में राधा कृष्ण के इन दिव्य लीलाओं का वर्णन किया है। क्योंकि ये जो दिव्य लीलाएं हैं उनको समझने के लिए अधिकार की आवश्यकता है। श्री श्री राधा गोविंद देव के, श्री श्री पंच तत्व के, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान के, श्रील प्रभुपाद के। तो जो राधा कृष्ण की लीलाएं हैं, हाँ, उनको समझने के लिए अधिकार की आवश्यकता है। तो वो अधिकार क्या है, हाँ, नरोत्तम दास ठाकुर अपने एक गीत में कहते हैं, हाँ, आर कबे निताई चांद करुणा है वे संसार वासना मोरा कबे तुच्छ है वे विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मान। कहते हैं कि कब, हाँ, भगवान नित्यानंद प्रभु की मेरे ऊपर कृपा होगी, विषय छाड़े या कबे मेरा जो मन भौतिक भोग के विषयों में लगा हुआ है उनसे कब शुद्ध होगा, हाँ, विषय छाड़िया कबे शुद्ध हवे मन कबे हम हेरिबो श्री वृंदावन। तो कब मेरा हृदय से मेरे मन से भौतिक भोग की जो कामनाएं हैं लालसाएं वो खत्म हो जाएगी, अब कब मैं जो वृंदावन का दिव्य दर्शन कर सकूंगा। और वो कहते हैं रूप रघुनाथ पदे हई वे आपको दे कबे हम भोज बसे युगल फिरत, कि कब मेरा जो हृदय है या मेरा अनुराग रूप रघुनाथ जी गोस्वामियों के जो लिटरेचर है उनको समझने में, उनके प्रति कब मेरे हृदय में आसक्ति बढ़ेगी, तब हाँ मैं योग्य बन जाऊंगा राधा कृष्ण के दिव्य लीलाओं को समझने के लिए। तो इसलिए यह जो अधिकार यही है कि हम अपने आप को जितना अधिक शुद्ध बनाते हैं हाँ भगवत नाम के द्वारा, उतना ही अधिक हम राधा कृष्ण के जान सकते हैं। और इसलिए ये बहुत आवश्यक है हाँ कि हम अपने हृदय को क्या करें, श्री चैतन्य महाप्रभु की सर्वप्रथम शिक्षा का पालन करने में लगाएं। लॉर्ड चैतन्य कहते हैं चेतो दर्पण मार्जनम, कि ये जो चित्त रूपी दर्पण आईना है उसको हमें क्लीन करना चाहिए। और वो कैसे क्लीन होगा, हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। तो यदि इसका हम नियमित रूप से उच्चारण करते हैं तो ये जो दर्पण जिसमें भौतिक वासनाएं भरी पड़ी हैं हाँ वो साफ होने लगेगी। तो जो श्रीमती राधा रानी हैं वो हर समय 15 साल की हाँ ही आयु की बनी रहती हैं, और उनका जो वर्ण है उनके दिव्य शरीर का वो मोल्टन गोल्ड मतलब तपा हुआ या पिघला हुआ जो सोना है उसके समान सुवर्ण है, सुवर्ण के समान पीला है, और वो ब्लू तो कह रहे थे नीला वस्त्र धारण करती हैं श्रीमती राधा रानी, और अपने आप को पर्ल्स और कुछ फ्लावर से डेकोरेट करती हैं। तो ये उनके कुछ प्रिय चीज़ें हैं, और उनकी जो वेणी हैं बहुत लंबी हैं, वो 3 प्रकार से बंदी होती हैं, और उसके साथ साथ वो हाथ में कंगन जो धारण करती है वो भी नीले कलर के होते हैं, और 12 प्रकार के आभूषण वो अपने शरीर के अलग अलग स्थानों में धारण करती हैं। तो लेकिन उनमें से एक महत्वपूर्ण एक लॉकेट श्रीमती राधा रानी धारण करती हैं, और उसमें क्या है कि भगवान कृष्ण का उसमें पिक्चर बना रहता है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी की ये कुछ चीज़ें हैं, और उसके साथ साथ स्कंद पुराण में कहा गया है कि श्रीमती राधा रानी कृष्ण को कितनी प्रिय हैं, जैसे कि जो 16,000 कई गोपियाँ कई करोड़ों गोपियाँ हैं उनमें से 108 हाँ जो प्रमुख हैं उनमें से भी जो 8 गोपियाँ कृष्ण को अधिक ही प्रिय हैं, और उनमें से भी 2 हैं चंद्रावली और श्रीमती राधा रानी। तो उनमें से भी जो एक है सर्वश्रेष्ठ राधा रानी कृष्ण को अधिक प्रिय हैं। तो इतनी प्रिय है कि कृष्ण हाँ क्या करते हैं वृंदावन में हर समय श्रीमती राधा नाम का उच्चारण करते हैं, ये उनके लिए मंत्र है, इस मंत्र का वो चांत करते हैं श्रीमती राधा रानी के नाम का। बल्कि कृष्ण जब वृंदावन त्याग भी देते हैं, वृंदावन तो छोड़ते नहीं है कृष्ण, लेकिन मथुरा और द्वारका में जब जाते हैं तो द्वारका में जाने के बाद भी वृंदावन के इन भक्तों के प्रति उनके हृदय में उतना ही गहन जो आकर्षण है अटैचमेंट वो बना रहता है। और ऐसा वर्णन आता है कि जब वृंदावन में कृष्ण 16,108 रानियों के साथ अपने 16,108 अलग अलग फॉर्म में थे, लेकिन फिर भी इतनी सारी चीज़ें होने के बावजूद कृष्ण को द्वारका में होने के बाद में जो विरह है वो वृंदावन का होता था, और रात में वो सो भी जाते थे हाँ तो वो श्रीमती राधा रानी का या गोपियों का स्मरण करते थे हाँ या मदर यशोदा का हाँ। क्यों? क्योंकि ब्रजवासियों का क्यों इतना वो स्मरण करते थे, क्योंकि जो वृंदावन के जो वासी हैं उनके लिए जो प्राण धन है वो कौन है, कृष्ण है। जैसे कि भक्ति विनोद ठाकुर कहते हैं कि उनका समर्पण कैसे है, मानस देहो गेहो जो किछु मोर अर्पिल द्वापदे नंद किशोर। तो ये वृंदावन जो वासी हैं उनका ये समर्पण है कि हे नंद किशोर हाँ मेरा जो मानस देह मेरा मन है शरीर है वाणी है जो किछु मोर जो भी मेरे पास है वो सब क्या है, आपके चरणों में मैंने समर्पित किया है। तो इस प्रकार जो वृंदावन वासी हैं वो कृष्ण की नाना प्रकार की सेवाओं में लगे रहते थे, हर समय कृष्ण की सेवा में एंगेज थे, और इसीलिए उन सबको कृष्ण के प्रति बहुत ज्यादा आकर्षण था। और सबसे ज्यादा जो अटैचमेंट कृष्ण के प्रति वो श्रीमती राधा रानी को है, और राधा रानी भी कई प्रकार से कृष्ण की सेवा करती थी, और उसमें से एक फेवरेट सेवा थी क्या है कि कृष्ण के लिए कुकिंग करना। इसलिए जो लेडी किचन है उसका नाम दिया जाता है कि वो राधा रानी का किचन है, उसके ऊपर किसी का हक नहीं है, वहाँ कुकिंग कौन करेगी कृष्ण के लिए, श्रीमती राधा रानी। क्योंकि आप वृंदावन परिक्रमा करेंगे तो वहाँ एक पानी घाट नाम की जगह आती है, तो वो स्थान में एक बहुत अद्भुत लीला है जहाँ एक दिन गोपियाँ जा रहे थे कई प्रकार के व्यंजन बनाकर, कई प्रकार के दूध के व्यंजन भर भर के अपने घड़ों में या जैसे भी ले जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उस बार दुर्वासा मुनि आए थे और उनका आश्रम था, और वो सोच रहे थे कि ये जो दुर्वासा मुनि को हम ये ऑफर करेंगे तो उनकी हमारे ऊपर कुछ कृपा हो जाएंगे, उनके आशीर्वाद से कृष्ण के प्रति हमारा स्मरण जो समर्पण है और अधिक होगा। तो ये जब जाती है यमुना के किनारे तो देखती है कि जो यमुना का जल है पूरी तरह से यमुना जोरदार बह रही थी, तो उस समय गोपियाँ उसमें श्रीमती राधा रानी भी थी, तो गोपियाँ कहती हैं कि अभी कैसे इसको पार करें। तो सबसे पहले गोपियाँ यमुना जी को प्रणाम करती हैं और कहती है कि हे यमुना देवी, यदि कृष्णा पूर्ण नैष्ठिक ब्रह्मचारी है तो आप क्या करिए, हमें जगा दीजिए, क्या कहेंगे, रास्ता दे दीजिए ताकि हम आपको पार कर सकें। तो यमुना देवी ने ये सुना तो तुरंत क्या कर दिया, एक अलग हो गई और बीच में से रास्ता दिया, तो गोपियाँ चली जाती हैं और दुर्वासा मुनि को ऑफर करती हैं सारा जो प्रसाद या जो था उन्होंने उनको ऑफर करती, और दुर्वासा मुनि प्रसाद पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। जैसे कि चाणक्य पंडित कहते हैं, चाणक्य पंडित कहते हैं कि का चिंता मम जीवने यदि हरि विश्वम्बर गीयते, कि मैं अपने जीवन में क्यों चिंता करूं किसी चीज की, हाँ यदि मैं कृष्ण के नामों का गुणगान कर रहा हूँ, कृष्ण का गुणगान कर रहा हूँ, तो इस संसार में मुझे अपने लिए किसी और चीज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वो कहते हैं कि मेरे लिए तो उत्सव क्या है, नेत्रोत्सव है, मेरे लिए नेत्रोत्सव क्या है, कृष्ण के दिव्य रूप को देखना, लेकिन जो ब्राह्मण है उनके लिए उत्सव क्या है, अच्छे अच्छे भोजन प्राप्त करना। तो जो दुर्वासा है उनको जब गोपियों ने सारा प्रसाद ऑफर किया तो बहुत खुश हो गए, सबको आशीर्वाद देने लगे। तो श्रीमद राधा रानी को वे विशेष रूप से आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं ताकि हे राधिके, आप जो भी कुक करोगे, जो भी कुकिंग आप करोगे वो अमृत के समान होगा, और जो भी कोई इसको ग्रहण करेगा उसकी जो आयु है वो लंबी होगी और उसको कभी भी कोई बीमारी नहीं होगी। तो ये श्रीमती राधा रानी के द्वारा जो कुकिंग किया हुआ कुक किया होगा प्रसाद है उसकी ग्लोरी है या महानता है। तो ये वर ये आशीर्वाद दुर्वासा से प्राप्त हुआ था, तो श्रीमती राधा रानी के हाथों में तो जादू ही थी एक्चुअली। और ऐसे कहा जाता है कि कृष्ण के लिए आज भी श्रीमती राधा रानी कुक करती हैं, तो उन्होंने अभी भी कोई भी जो व्यंजन है रिपीट नहीं किया है। क्या नहीं किया है, रिपीट नहीं किया है, मतलब आप सोचिए कृष्ण कितने भोजन व्यंजन ग्रहण करते हैं, रोज एक समय 56 भोग खाते हैं, तो पता नहीं आध्यात्मिक जगत में कितना ग्रहण करते होंगे, लेकिन श्रीमती राधा रानी इतनी एक्सपर्ट है कि आज तक उन्होंने कोई भी व्यंजन रिपीट नहीं किया है। और इसी कारण यशोदा माता का प्रेम अपने कृष्ण के प्रति इतना था, हर समय चिंता लगे रहते थे कृष्ण के। तो श्रीमती राधा रानी को जो यशोदा माता हैं वो बुलाते थे, स्पेशली बुलाते थे, क्यों बुलाते थे, क्योंकि इसके हाथ का बना हुआ व्यंजन या जो कृष्ण ग्रहण करेगा मेरा बालक, तो इसको कभी भी कोई बीमारी नहीं हो सकती, वैसे उनको कोई बीमारी होगी भी नहीं। तो भगवान कृष्ण है और उनकी आयु लंबी होगी। तो इस प्रकार से जो राधा रानी है अपना जो दिव्य प्रेम है सेवा के द्वारा प्रकट करती हैं। प्रेम कैसे प्रकट होता है किसी के प्रति, जब हम उस व्यक्ति की या वो चीज की सेवा करते हैं, तो भगवान के प्रति हमारा कितना अनुराग और प्रेम है उसका प्रदर्शन एक प्रकार से होता है। हम किस प्रकार उनको सर्व करते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी अपना अपना जो प्रेम की रस्सी है उसके द्वारा कृष्ण को बांध देते हैं और कृष्ण उनके हाथ की डॉल बन जाते हैं। डॉल मीन्स क्या, गुड़िया। तो आचार्य कहते हैं कि जैसे एक बालिका जिसके पास गुड़िया होती है उसके कंट्रोल में होती है, तो उसी प्रकार जो प्रॉपर्टी श्रीमती कृष्णा राधा रानी की प्रॉपर्टी है। किसकी प्रॉपर्टी है? राधा रानी की है। तो आप सोच सकते हैं कि आपको कृष्ण को अप्रोच करना है क्योंकि हम चाहते हैं कृष्ण प्राप्ति है यहाँ है पे कृष्ण, हम चाहते हैं कृष्ण को प्राप्त करना, तो ये दूसरे की प्रॉपर्टी है। तो अनधिकृत रूप से आप यदि ट्राई करते हैं किसी की प्रॉपर्टी पर, क्या कहते हैं, अधिकार कब्जा करने के लिए, तो आपको क्या क्या दंड मिलता है, आपको कितने सारे प्रॉब्लम शुरू हो जाते हैं आपके जीवन में। जैसे कई रिक्त लैंड होती है तो वहाँ बोर्ड में लगा रहता है ये प्रॉपर्टी इस व्यक्ति की है। तो आचार्य वैष्णव आचार्य कहते हैं कि जो श्रीमती राधा रानी है वो कृष्ण की प्रॉपर्टी, जो कृष्ण है वो श्रीमती राधा रानी की प्रॉपर्टी है। इस प्रॉपर्टी को हमें अप्रोच करना है, कृष्ण को अप्रोच करना है, तो हमें श्रीमती राधा रानी को सर्वप्रथम अप्रोच करना चाहिए। और यही सर्वोच्च विधि है जो श्री चैतन्य महाप्रभु ने हमें सिखाए हैं। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम, कि हमारे आराध्य भगवान कौन है? ब्रजेश तनया, ब्रज के ईश नंद महाराज, उनके जो तनय है, उनके जो पुत्र है वो कौन है? कृष्ण है। आराध्य भगवान ब्रजेश तनया तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रज वधु वर्गेन वा कल्पिता, कि ये जो कृष्ण है और उनका धाम भी दिव्य है वृंदावन धाम, और ऐसे जो कृष्ण है उनकी उपासना कैसे की जाती है, जैसी रम्या काचित उपासना, जैसे गोपियों ने भगवान की उपासना की है, उनकी सेवा में हर समय वो लगी हुई है तन मन और अपने वाणी से हर समय कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जो वृंदावन की गोपियां हैं वो तैयार हैं। तो वो मूड हमारा होना चाहिए कि हर समय हमारे जीवन का लक्ष्य ये बनाए कि किस प्रकार से मैं अपना जीवन मोल्ड करूं कि हर एक एक्टिविटी से मैं कृष्ण को प्रसन्न करूं। तो इस प्रकार से हम अपने आप को लगाते हैं तो जो कर्म बंधन है वो हमें नहीं लगता है। तो इस प्रकार से श्रीमती राधा रानी के जो चर्चा है वो कई प्रकार से की जाती हैं शास्त्रों में, और आप देखेंगे कि व्यास देव ने कई सारे ग्रंथों की रचना की, सबसे पहले वेदार्थ, उपनिषदास, पुराण, कई सारे पुराण और महाभारत, इन सब की रचना की, और फिर भी वो बड़े उदासीन और दुखी थे क्योंकि उन्होंने, उनको आनंद नहीं आ रहा था, उनको लग रहा था कि कोई चीज मैंने मिस की है। तो भागवत की जो रचना की है उसका जो महत्वपूर्ण एक प्रकार से रीजन है कि जो वहाँ, क्योंकि कृष्ण का वर्णन तो कई पुराणों में आपको मिलेगा, लेकिन विशेषता जो गोपियों की महानता है और गोपियों में भी जो श्रीमती राधा रानी की महानता है उसको स्थापित करने के लिए व्यासदेव विशेष रूप से श्रीमद् भागवतम की रचना करते हैं। इसलिए जो श्रीमद् भागवतम है वो सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है। जैसे कि भक्ति सिद्धांत महाराज कहते हैं कि एक लाइब्रेरी में कई हजारों लाखों ग्रंथ बुक्स हैं, सारी किताबें जल जाए लेकिन श्रीमद् भागवतम बचा रहे हैं, तो आप किसी और बुक को, कोई और नॉलेज प्राप्त करने के लिए किसी और बुक को हाथ लगाने की आवश्यकता नहीं है। तो इसलिए जो शास्त्र है वो एक चीज का वर्णन करते हैं श्रीमती राधा रानी के गुणों का। तो ऐसे जो श्रीमती राधा रानी हैं, हाँ, जिनकी प्रॉपर्टी कृष्ण है और हमारे जीवन का लक्ष्य कृष्ण प्रेम है, तो उसे हमें प्राप्त करना है, हाँ, तो हमें श्रीमती राधा रानी के चरणों का आश्रय लेना पड़ेगा, श्रीमती राधा रानी को अप्रोच करना पड़ेगा। क्योंकि श्रीमती राधा रानी को हम प्रसन्न कर लेते हैं तो हम कृष्ण को इजीली, हाँ, प्रसन्न करते हैं। तो इसलिए हमें अपने जीवन का एक प्रकार से गोल, उद्देश्य बनाना चाहिए श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न करना, क्योंकि कृष्ण को सीधा अप्रोच नहीं हो सकता। इसलिए आप देखेंगे डिटीज का हम नाम लेते हैं तो सर्वप्रथम क्या कहते हैं, हाँ हाँ, जैसे आप क्या गोविंद देव है ऐसे कहते हैं गोविंद देव राधा, नहीं, राधा गोविंद देव, राधा पार्थ सारथी, राधा वृंदावन चंद्र। तो इस प्रकार से जो श्रीमती राधा रानी को इस प्रकार से हम अप्रोच करते हैं, प्रभुपाद ने राधा अष्टमी में 3 लेक्चर दिए हैं, लंदन में 2 और मॉन्ट्रियल में 1। तो प्रभुपाद एक लेक्चर में कहते हैं कि हमें राधा रानी के द्वारा कृष्ण को अप्रोच करना चाहिए। वो ऐसा उदाहरण देते हैं, प्रभुपाद जी, आप फ्लावर ले आते हैं तो आपको श्रीमती राधा रानी को देना चाहिए और राधा रानी को अप्रोच करना चाहिए कि आप कृष्ण को ऑफर करती है, हाँ, तो वो कृष्ण को ऑफर कर सकती हैं। तो जो हम हरे कृष्ण महामंत्र भी चांट करते हैं, हाँ, तो उसका अर्थ यही है कि हम श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करते हैं कि हे हरे, हाँ, हे हरा, भगवान की अंतरंगा शक्ति, आप मुझे क्या करो, हाँ, कृष्ण के जो परम आनंददायक हैं उनकी सेवा में मुझे नियुक्त करो। तो इस प्रकार से जो सारे शास्त्र हैं और सारे जो आचार्य हैं वो इसी चीज का गुणगान करते हैं। और श्रील प्रभुपाद भी जब अमेरिका गए थे तो श्रील प्रभुपाद ने 2 बंगाली पोएम्स लिखे थे। तो एक का नाम था मार्तने भागवत धर्म और दूसरे का था भगवान श्री कृष्ण पाद पद्मे प्रार्थना, भगवान के चरण कमलों में प्रार्थना। तो उसमें जो शुरुआत ही श्रील प्रभुपाद बहुत अच्छी तरह से एक चीज को स्थापित करना चाहते हैं। प्रभुपाद कहते हैं अपने उस पोयम में, जब अमेरिका में जाते समय 1 महीने के लिए जलदूत जहाज में प्रभुपाद यात्रा कर रहे थे, तो कहते हैं कृष्ण तब पुण्य हमें भाए, ये पुण्य करीबे जब राधा रानी खुशी हमें, ध्रुव अति बलि तुमाता है, कि कृष्ण की जो कृपा है एक प्रकार से हम प्राप्त कर सकते हैं यदि श्रीमती राधा रानी को हम अप्रोच करते हैं, हाँ, तब यदि राधा रानी हमारे कारण से खुश हो जाती हैं तो कृष्ण प्रसन्न हो जाते हैं। ध्रुव अति बलि तुमाता है, तो प्रभुपाद कहते हैं ये बात ध्रुव मिला को बहुत स्ट्रिक्टली या कठोरता से निश्चित रूप से ये कह रहा हूँ। तो इस प्रकार से प्रभुपाद के जीवन में भी आता है, जब श्रील प्रभुपाद अपने बाल्यावस्था में थे तो उनके पिताजी कई सारे साधु महात्मा उनको बुलाते थे अपने घर और उनको प्रसाद खिलाते थे और क्या कहते थे कि मेरे बेटे को आशीर्वाद दीजिए, हाँ, क्या बने ये, क्या बने मेरा बेटा, श्रीमती राधा रानी का अनन्य भक्त, हाँ। लेकिन उनकी माँ क्या चाहते थे, मेरा बेटा जो है लंदन चला जाए और बैरिस्टर बने। तो आपने पढ़ा होगा श्रील प्रभुपाद लंदन भी जाते हैं, बहुत वंडरफुल फास्ट टाइम है, समय बहुत ही कम है तो जस्ट मैं थोड़े समय में कवर कर लेता हूँ। तो श्रील प्रभुपाद जब लंदन गए तो डिवोटीज इतने एक्स्ट्रा सी में थे, हाँ, सारे लोग, प्रभुपाद पहली बार एयरपोर्ट से उतरे, बाहर निकले और थोड़ी सी बारिश आ रही थी और इतने डिवोटीज 3-4 मृदंगास करताल और देखो से पागल हो गए हैं, इतना नृत्य कर रहे थे एयरपोर्ट के बाहर। और जैसे प्रभुपाद को देखा उन्होंने सबने प्रणाम किया, बल्कि नीचे इतने सारे जो पत्थर के टुकड़े और काफी चीजें थी, तो डिवोटीज नाच रहे हैं, गा रहे हैं जय प्रभुपाद जय प्रभुपाद। और एक लिमोसिन पता नहीं जो भी एक कार लाए थे प्रभुपाद के लिए, बहुत ही बड़ी और अद्भुत कार, तो इतने भक्त खुश थे। तो प्रभुपाद आते हैं और भक्तगण प्रभुपाद को लेते हुए कार के पास जाते हैं, तो ड्राइवर बैठा होता है और इतने एक्सट्रेसी में कि कार का दरवाजा खोलते हैं, प्रभुपाद को बिठाते हैं और कार का दरवाजा लगाते हैं और ड्राइवर लेके चला जाता है और नाच रहे हैं। लेकिन कार चली जाती है तब भक्तों को पता चलता है कि अरे प्रभुपाद के साथ कोई भी नहीं गया है, अकेले ही प्रभुपाद को भेजा है। तो प्रभुपाद तो जब जा रहे थे लंदन की बड़ी बड़ी सड़कों से, तो देखा कि मेरे डिसाइपल है नहीं मेरे साथ और ड्राइवर है। अच्छा है कि उस समय ड्राइवर को पता था कि प्रभुपाद को कहाँ पहुँचाना है। तो भक्तजन बहुत लज्जित हो गए, तो तुरंत अपनी गाड़ियों में बैठते और जिस स्थान में प्रभुपाद को रिसीव करना था उस स्थान में पहुँचते हैं। तो प्रभुपाद तुरंत अपनी बिल बैग अपने हाथ में लेते हैं और चांट करने लगते हैं, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम। और चांट कर रहे होते हैं अकेले हरे कृष्ण महामंत्र अपनी माला पर, तो अपना स्मरण आता है कि मेरी माँ चाहती थी। प्रभुपाद बोलते हैं कि मैं जब लंदन में कार में था तो मैं स्मरण हो रहा था कि मेरी माँ चाहती थी कि मैं लंदन जाऊँ, हाँ, और वहाँ से कुछ लाओ या वहाँ नौकरी करो, बैरिस्टर बनो। तो लेकिन मैं ज़रूर आया हूँ लंदन, हाँ, लेकिन कुछ लेने के लिए नहीं, हाँ, कुछ देने के लिए आया हूँ। इस प्रकार से बचपन से ही जो श्रील प्रभुपाद हैं उनके जो पिता हैं गौर मोहन डे, वो चाहते थे कि मेरा जो पुत्र है वो श्रीमती राधा रानी का सेवक बने। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो भगवान के टॉप मोस्ट डिवोटी हैं, सर्वोच्च भक्त हैं, हाँ, कृष्ण के कोई सर्वोच्च भक्त हैं तो वो श्रीमती राधा रानी हैं। और यदि हमें कृष्ण के चरणों में आश्रय लेना है, हाँ, तो हमें क्या करना होगा, हाँ, कृष्ण को डायरेक्ट हम अप्रोच नहीं कर सकते। जैसे आदि पुराण में कहते हैं कृष्ण एमे भक्त जना पार्थ नमे भक्तांच ते जना। कृष्ण अर्जुन को कहते कि हे अर्जुन, जो व्यक्ति कहता है कि मैं कृष्ण का भक्त हूँ वो मेरा भक्त नहीं है। और वो कहते मद भक्तानांच ये भक्तास्ते मे भक्त तमामतः, कि लेकिन जो मेरे भक्तों का भक्त है वो मेरा भक्त है। तो इस बात को कृष्ण स्थापित करते हैं अर्जुन के माध्यम से आदि पुराण में। और तो उसी लिए श्री चैतन्य महाप्रभु भी उसी शिक्षा को हमें प्रदान करते हैं। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं नाहम न वर्णी न च ग्रहपतिर न वानस्तो यतिर्वा किन्तु प्रोद्याखिल पूर्णामृताब्धे गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास। कि ना मैं वर्ण और आश्रम में हूँ, ना मैं गृहस्थ वानप्रस्थ सन्यासी या ब्रह्मचारी हूँ, ना मैं ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र और वैश्य हूँ, मैं क्या हूँ, गोपियों को जो भरता है, हाँ, वो कृष्ण उनके चरण कमलों उनके जो दास है उनके दासों के दासों का दास हूँ। तो इस प्रकार से ये जो मूड श्रीमती राधा रानी के जो आज आविर्भाव तिथि है, हाँ, इस प्रकार की जो भावना है ये जो मूड है हमें अपने हृदय में विकसित करना चाहिए और तभी हम श्री चैतन्य महाप्रभु के वास्तविक अनुयायी कहलाएंगे। क्योंकि चैतन्य महाप्रभु यही शिक्षा देना चाहते हैं और श्रीमती राधा रानी तभी खुश होती हैं, हाँ, और यदि राधा रानी खुश होती हैं तो कृष्ण खुश हो जाते हैं। क्योंकि आप देखेंगे राजा है तो वो देखता है कि मेरी रानी बहुत खुश है आज, उसकी अच्छी सेवा कर रहे हैं सब लोग, तो राजा को आनंद होता है कि नहीं, हाँ, होता है। तो वैसे ही जब कृष्ण राजा है ब्रजराज ब्रज के राजा, तो उनको भी आनंद होता है जब वो देखते हैं कि श्रीमती राधा रानी सर्वाधिक यह है, प्रसन्न है। तो शास्त्रों में दो सर्कल का वर्णन आता है, एक है इनर सर्कल और एक है आउटर सर्कल, एक अंतरंग गोला और एक बाहरी गोला। तो जो श्रीमती राधा रानी है वो अंतरंग सर्कल में है और वो अंतरंग सर्कल की गुरु हैं। और बाहरी सर्कल में कौन है? हाँ, बाहरी सर्कल में है नित्यानंद प्रभु। हाँ, नित्यानंद प्रभु हैं। हाँ, बिना नेता, हाँ क्या है, निताय बिना भाई राधा कृष्ण भाई देना है। हाँ, कहते कि नित्यानंद प्रभु की कृपा से राधा कृष्ण को प्राप्त करना बहुत इजी है, लेकिन उनकी कृपा नहीं है तो आप प्राप्त नहीं कर सकते। तो बाहरी सर्कल के जो गुरु हैं वो नित्यानंद प्रभु हैं, और नित्यानंद प्रभु को ही रिप्रेजेंट करते हैं हाँ जो स्पिरिचुअल मास्टर हैं, गुरु हैं। तो यदि कोई व्यक्ति, और श्रीमती राधा रानी तभी उस व्यक्ति को स्वीकार करती हैं जो लॉर्ड नित्यानंदा के सर्कल में है। हाँ, लॉर्ड नित्यानंदा के सर्कल में होना मतलब कृष्ण या उनके प्रतिनिधि का आश्रय लेना और उनके आज्ञाओं का पालन करना, गुरु के ऑर्डर्स का सिंसियरली और सीरियसली सबमिसिवली। तो जब नित्या श्रीमती राधा रानी कहती हैं, सोचती है कि ये जो भक्त है इस आउटर सर्कल में परफेक्ट है, वो अपने गुरु और नित्यानंद प्रभु की उन आज्ञाओं का पालन कर रहा है सिंसियरली, तो श्रीमती राधा रानी ऐसे भक्त को क्या करती है, स्वीकार करती है। इसलिए कहा गया है आश्रय लैया भजे कृष्ण तार नहीं तेजे बाकी सब मरे आकार, कि आश्रय लैया भजे, जो व्यक्ति आश्रय लेकर वैष्णव और गुरु का आश्रय लेकर भक्ति करता है तो कृष्ण ऐसे व्यक्ति का कभी भी त्याग नहीं करते, लेकिन जो व्यक्ति आश्रय नहीं लेता हाँ तो वो कहते कि बाकी सब गेला कारण है। तो इसलिए ये विधि है श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करने की आज, कि हम ये जो मूड है वो विकसित करें, हम गोपी भर्तु पद कमलयोर दास दासानुदास, और हम शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करें उनकी कृपा से। क्योंकि हम सब चाहते हैं, हम इसलिए हैं श्रील प्रभुपाद के मूवमेंट में कि हम शुद्ध भक्त बने। जैसे प्रभुपाद अपने आखिरी समय में लंदन गए थे तो कई सारे यूथ बड़े कई सारे लड़के उनको मिलने आए, तो इंडियंस थे, कोई अलग अलग डिग्री प्राप्त कर रहा था वो और अपना महानता बता रहा था, मैं PhD हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। तो प्रभुपाद कहते कि हम डिवोटीज इन सब डिग्रीज के लिए लालायित नहीं है, हम तो एक ही डिग्री के लिए लालायित हैं और वो क्या है, शुद्ध भक्त। तो इस प्रकार से कहते हम एक ही डिग्री के लिए लालायित हैं कि हम शुद्ध भक्त बनना चाहते हैं। और शुद्ध भक्त कौन है? जो शुद्ध भक्त की सेवा में लगा हुआ है। तो इस प्रकार से यदि हम जो स्पिरिचुअल मास्टर है, जो शुद्ध भक्त है उनकी सेवा में लगे रहते हैं तो आप सरलता से शुद्ध भक्त बन सकते हैं और श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। तो आज के दिन हम वास्तव में श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो दो वे हैं, दो चीज़ें हैं जिससे हम श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। एक है कि हम अपने आप को सिंसियरली वैष्णवों की सेवा में लगाएं, साधुस या गुरु या वैष्णवों की सेवा में हाँ हम अपने आप को लगाएं, या वैष्णवों की सेवा करने का जो मूड है वो अपने हृदय में डेवलप करें। और दूसरा क्या है कि हम सिंसियरली भगवान के जो पवित्र नाम है उनका चांटिंग करें, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो ये दो सबसे महत्वपूर्ण अंग हैं या चीजें हैं जिनसे श्रीमती राधा रानी की जो कृपा है हम बहुत सरलता से प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि आप देखेंगे कि जो हमारे वैष्णव आचार्यास हैं उनके जीवन में भी आप उनका पढ़ेंगे तो आप ये पता चलेगा कि श्रीमती राधा रानी की कृपा किस प्रकार से उन ग्रेट वैष्णवों ने प्राप्त की हैं। समय खत्म हो गया है, तो लेकिन जस्ट मैं ब्रीफली और अगर 5 मिनट ले लेता हूँ तो कई ऐसे उदाहरण हैं वृंदावन में, कैसे अनेक वैष्णव ने वैष्णव की सेवा करके श्रीमती राधा रानी की कृपा प्राप्त की है। जैसे कि आप देखेंगे जब राधा दामोदर मंदिर जाते हैं तो शुरुआत के दिनों में वो स्थान सेवा कुंज, अभी भी वो सेवा कुंज का स्थान है, तो वहाँ एक महान भक्त आए थे जिनका नाम था श्यामानंद प्रभु, जो उड़ीसा से थे, और वो उनको भेजा था जीव गोस्वामी से शिक्षा लेने के लिए। तो वो आकर एक सेवा करते हैं वैष्णव के लिए, क्या सेवा करते हैं, रोज अर्ली मॉर्निंग झाड़ू लेते थे और पूरा सेवा कुंज राधा दामोदर मंदिर का सारा एरिया है वो हर मॉर्निंग सुबह जल्दी उठकर साफ किया करते थे, और ताकि वैष्णव, क्योंकि सारे वैष्णव सुबह सुबह सारे गोस्वामी मंगल आरती के लिए आते थे, लोकनाथ गोस्वामी, जीव गोस्वामी, नरोत्तम दास ठाकुर, श्रीनिवास आचार्य, हरिदास पंडित, कई सारे जो महान वैष्णव थे वो सारे आते थे, ब्रजवासी। तो सुबह सुबह उनको मे भी उस समय वृंदावन तो कई सारे पौधों से या पेड़ों से और इनसे हरा भरा था, तो कई कांटे वगैरह भी होते थे या पत्थर, तो उनको उनसे बाधा ना हो और हर समय वो जो एरिया है वो साफ रहे, तो वैष्णव की प्रसन्नता के लिए श्यामानंद प्रभु इस प्रकार से सेवा करते थे। तो ऐसे ही सेवा करते करते, क्योंकि वृंदावन वह ऐसा दिव्य स्थान है कि आज भी नियमित रूप से श्रीमती राधा और जो कृष्ण है वो अपनी दिव्य लीलाएं करते हैं, इसलिए हम देख नहीं पाते। वृंदावन जाते तो हमें दिखाई देते हैं सुवर्ण या फिर स्वीट शॉप्स या फिर गंदगी दिखाई देती है, बंदर दिखाई देते हैं, हाँ तो हमें लगता है ये वृंदावन है, लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं चर्म चक्ष देखे तार प्रपंच रसम, कि चर्म चक्ष आपने इस चमड़े की इन आंखों से, भौतिक आंखों से देखता है तो वो उसको ये जो वृंदावन है वो भौतिक ही दिखने लगता है, लेकिन वृंदावन क्या है, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन। हाँ, वृंदावन क्या है, आज भी वहां की जो भूमि है वो चिंतामणि से, टच स्टोन से बनी हुई है, और वहां के वन कल्प वृक्ष है, श्री राधा गोविंद देव के पंच तत्व के। तो वृंदावन का वो जो दिव्य स्थान है वो इस प्रकार से बना हुआ है। तो ये जो रोज झाड़ू लगा रहे थे तो राधा कृष्ण रोज लीलाएं करते हैं, तो एक दिन मॉर्निंग में उनको एक झाड़ी के नीचे श्रीमती राधा रानी का नुपुर मिलता है। आप देखेंगे 350 साल पहले की घटना है, तो वो नुपुर मिलता है और वो समझ जाते कि ये दिव्य नुपुर है, और जब श्रीमती राधा रानी अपने सखियों के साथ वापस जाती है तो देखती है कि अपना जो लेफ्ट बाई दाया, क्या कहते लेफ्ट पाव को, बाया पाव में नुपुर नहीं था, तो तुरंत विशाखा को भेजते कि जाओ विशाखा देख के आओ मेरा नुपुर कहाँ गिर गया है। तो विशाखा देवी जाते और तो ये जब झाड़ू लगा रहे थे पूछते हैं आपको नुपुर मिला है, कहते हाँ, और विशाखा बिल्कुल एक ओल्ड लेडी का रूप धारण करके जाती है, और ये जोरदार, और उस दिन तो ज्यादा ही आनंद में थे क्योंकि ब्रज रस से वो अपने आप को ये करना चाह रहे थे, स्नान करना चाहते हैं, स्नानम कि वृंदावन की जो रज है वो मेरा जल है स्नान करने के लिए, नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना में कहते हैं कि मैं स्नान किससे करता हूँ, कि वृंदावन में जो वैष्णव चलते हैं और उनके चरण कमलों की जो धूल है वो वैष्णव की चरण धूली है, वो मेरी स्नान के लिए है, स्नान करने के लिए वो जल है। तो उस दिन तो ज्यादा ही आनंदित थे श्यामानंद प्रभु, और वो झाड़ू लगाते हैं और ज्यादा ज्यादा धूल उड़ाते हैं और सारे शरीर में वो ये करना चाहते हैं, हाँ क्योंकि वो दिव्य हैं जहाँ राधा कृष्ण के चरण पड़े हैं। तो ये जो विशाखा है एक ओल्ड लेडी का रूप धारण करके कहती कि हाँ तुम्हें कोई ये नुपुर मिला है मुझे वापस कर दो, ये कहते नहीं ये जिसका होगा उसे ही मैं वापस करूँगा। तो इन्होंने भी बड़ा ये किया था तो इन्होंने कहा मैं उन्हीं को वापस करूँगा, तो कहते कि ये संभव नहीं है, तो लेकिन फिर भी विशाखा श्रीमती राधा रानी को कहते कि वो दे ही नहीं रहे हैं। हाँ, तो फिर श्रीमती राधा रानी अलाउ करती है उनको मिलने के लिए। तो फिर विशाखा देवी इस श्यामानंद प्रभु को ले जाती हैं और राधा कुंड में स्नान करते ही इनका जो बॉडी है, एक मणि मंजरी या जो फीमेल फॉर्म में प्रकट हो जाते हैं श्यामानंद प्रभु, और श्रीमती राधा रानी को राधा कुंड के तट पर मिलते हैं। और उस समय वो अपना जो नुपुर है उनका वो प्रेजेंट करते हैं श्रीमती राधा रानी के हाथ में। तो राधा रानी लेती है और बहुत खुश हो जाती है और वही नुपुर को श्यामानंद प्रभु के माथे में लगाती हैं। तो माथे में लगाते ही एक चिन्ह तैयार होता है, मार्क, हाँ, वो तिलक का एक चिन्ह बनता है। तो आज भी वृंदावन में जाएंगे, उनके जो फॉलोअर्स हैं उसी प्रकार का तिलक लगाते हैं जो श्रीमती राधा रानी वो नुपुर वो लगाया था। और श्रीमती राधा रानी इतनी खुश हो जाती है कि उनको छोटे से श्याम सुंदर की एक विग्रह देती है। आज भी आप देखेंगे छोटे से कृष्ण जो राधा रानी ने दिए थे श्यामानंद प्रभु को, और तब नाम भी देती हैं, हाँ, क्या, हाँ, श्याम, उनको श्यामानंद प्रभु। उनका पहले नाम होता है दुखी कृष्णदास। क्या था उनकी मदर जो दुरिका देवी थी उनको दुखी कहते थे, क्योंकि जितने भी बच्चे प्रकट जन्म लेते थे वो सब मर जाते थे। हाँ, तो फिर लेकिन ये लड़का हुआ तो उसका दुखी नाम रखा सबने। हाँ, और फिर आगे चल के उनका नाम दुखी कृष्णदास पड़ा। फिर जब वृंदावन आए तो श्रीमती राधा रानी की कृपा से उनका नाम श्यामानंद, श्यामा, श्यामा श्रीमती राधा रानी का भी एक नाम है। उनको आनंद प्रदान किया उन्होंने नुपुर देकर, या कृष्ण को जो आनंद प्रदान करते हैं। तो जब ये आते हैं तो देखते हैं सब इनका, फिर आते हैं और वो डेटीज लेकर यमुना के किनारे और रोने लगते हैं, हाँ, राधा कृष्ण के विरह में। तो उस समय फिर जीवा गोस्वामी से मिलते हैं। तो फिर जो जीवा गोस्वामी देख के आश्चर्य हो जाते हैं कि ये क्या हो गया, इन्होंने किसी और से दीक्षा तो नहीं ली, हाँ, श्यामानंद प्रभु ने हमारा गौड़िया संप्रदाय त्याग दिया लग रहा है और नया संप्रदाय स्वीकार किया है। तो जीवा गोस्वामी चिंतित होने लगे कि आगे चलकर गौड़िया संप्रदाय का क्या होगा। हाँ, तो लेकिन फिर ये रोते हुए बताने लगे कि इस प्रकार से मेरे साथ घटना हुई है, और वो श्यामानंद के नाम से जीवा गोस्वामी भी पुकारने लगे। तो इनके जो गुरु थे जो, और तिलक का चिन्ह वैसे ही था, हाँ, और उनके छाती पर भी नाम लिखा गया था, मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो जीवा गोस्वामी ने ट्राई किया पोछने का उस तिलक को पानी और इन सब चीजों से, लेकिन वो जो चिन्ह पड़ा था वो कुछ क्या कहेंगे, हाँ, मिट ही नहीं रहा था। तो जीवा गोस्वामी भी चिंतित थे। फिर उनके जो गुरु महाराज उड़ीसा में थे गौरीदास पंडित ने हृदय चैतन्य, उनको पता चला कि मेरे शिष्य का नाम किसी ने चेंज कर दिया है। और इतना ही नहीं, उसको मैं भी उसका तिलक भी चेंज हो गया, संप्रदाय भी चेंज हो गया है। तो वहाँ से दौड़ते हुए आते हैं, हाँ, क्योंकि एक ही बहुत महत्वपूर्ण शिष्य थे उनके। तो आते देखते और वो डांटने लगते, तुम गुरु अपराधी हो, हाँ, और देखते कि इस प्रकार से तुमने कैसे किया है। तो वो भी ट्राई करते हैं किसी भक्त को लगा कर कि इसका जो चिन्ह है वो पोंछ डालो। तो ट्राई करता है जो व्यक्ति भक्त, लेकिन वो भी उनका जो तिलक है वो नहीं मिट नहीं पाता। तो लेकिन फिर उसी रात उनके जो गुरु जब रात को सोते हैं तो श्रीमती राधा रानी उनके सपने में आती हैं, कहती कि जो श्यामानंद है वो मेरा प्रिय भक्त है और मैंने ही उसे ये तिलक चिन्ह दिया है और नाम भी दिया है, और श्रीमती राधा रानी अपना जो दिव्य रूप है उनको प्रकट करती हैं। तो इस प्रकार से ऐसे कई उदाहरण हैं, हाँ, इन वैष्णव के जीवन में कि किस प्रकार से वैष्णव की प्रसन्नता के लिए, वैष्णव के लिए हम वैष्णव को सर्व करते हैं, तो श्रीमती राधा रानी की कृपा हमारे लिए इजी प्राप्त हो जाती है बहुत सरलता से। और ऐसे और भी उदाहरण सुन सकते हैं, समय का अभाव है। और दूसरा एक कृपा प्राप्त करने का वे था चांटिंग हरे कृष्ण महामंत्र का। तो आप देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी राधा कुंड के तट पर चांट कर रहे हैं और उनको धूप लग रही है, श्रीमती राधा रानी आती है और अपना क्या है, फरीदाबाद के बच्चे बहुत एक्सपर्ट है ये ड्रामा करने में, हाँ, तो ये ड्रामा विशेष रूप से करते हैं। तो श्रीमती राधा रानी आती है और चांट कर रहे होते हैं तो क्या करती है, उनको छाया प्रदान करती हैं। तो ये भी कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति शुद्ध नाम लेता है या हरे कृष्ण महामंत्र का बहुत ही सिंसियरली जाप करता है तो श्रीमती राधा रानी बहुत ही उस व्यक्ति पर खुश हो जाती हैं। हाँ, तो इस प्रकार से आज के इस महत्वपूर्ण जो दिन है, ये दो रास्ते हैं राधा रानी का कृपा प्राप्त करने का। तो आज हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए कि मेरे हृदय में भी ये जो दो गुण हैं वो प्रकट हों, ताकि मैं सिंसियरली अपने अध्यात्मिक गुरु और आपकी मैं सेवा कर सकता हूँ। तो इस प्रकार से हम श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर सकते हैं और उनकी जो कृपा है वो प्राप्त कर सकते हैं। और श्रीमती राधा रानी का मूड क्या है, प्रभुपाद अपने लेक्चर में कहते हैं, वो कहती है कृष्णा ओ हियर इज अ डिवोटी ही इज बेटर देन मी। हाँ, जब राधा रानी कोई भक्त आता है तो कृष्ण को कहते हैं कि हे कृष्ण देखो ये भक्त है, ये मुझसे भी ज्यादा हाँ अच्छा है, आप इसको स्वीकार करिए। तो इस प्रकार से डिवोटी चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं का पालन करते हुए अपने आध्यात्मिक जीवन में आगे बढ़ता है। और चैतन्य महाप्रभु की जो महत्वपूर्ण शिक्षा है, तृणादपि सुनी चैन तरोरपि सहिष्णुना हमानिना मानदेना कीर्तनीय सदाहरी, कि हमें विनम्र होकर और सहनशील होकर भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम हरे। तो नियमित रूप से हम इस हरे नाम का उच्चारण करते हैं, हाँ, तो क्या होगा, हम श्रीमती राधा रानी के और करीब जा सकते हैं और उनके दिव्य कृपा प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्णा श्रीमती राधा रानी के, श्री राधा गोविंद देव के, पंच तत्व के, श्रील प्रभुपाद के, गौर भक्त वृंद के, गाय गौर प्रेमानंदे। किसी का कोई प्रश्न है छोटा सा या फिर कुछ कीर्तन करेंगे, टाइम तो हो गया वैसे काफी लेट। श्रील प्रभुपाद के।